बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज जगत गुरु आद्य श्री शंकराचार्य भगवान की जय। ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम के पंचम पीढ़ाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। शनो मित्र शन वरुण शनो भवत्वर्यमा शन इन्द्रो बृहस्पति शनो विष्णु रुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्ये माक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गै सुषुवां संसनुभिर्व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रजश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षु अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ
नारायण 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 नारायण। आइए हम सब मिलकर स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। स्वामी जी की प्रेमपुरी पर बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी जी का प्रवचन हम कई वर्षों से सुन रहे हैं, स्वामी बहुत ही शांत मिलनसार और बहुत करुणा से भरे हुए संत हैं। स्वामी जी की वाणी का लाभ हमें 31 मार्च तक मिलेगा और श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय पर आत्मसंयम योग पर स्वामी जी की वाणी का लाभ हमें मिलेगा। जय श्री कृष्ण।
महाराज, स्वामी जी की प्रेमपुरी पर कृपा नहीं है, प्रेमपुरी की स्वामी जी के ऊपर कृपा है। सत्य तो यही है, अगर प्रेमपुरी नहीं हो तो अध्यात्म आनंद नहीं हो। ये प्रेमपुरी क्या होती है? श्री कृष्ण ही प्रेम का सदन है। पुरी कहते हैं नगरी को, श्री कृष्ण एक स्वयं नगर है। आनंद घन, चैतन्य, कारुण्य, दिव्य, भव्य, आत्मीय और प्रेम की धारा फ्रॉम हेड टू फुट। ओनली उत्सव, ओनली आनंद, कैवल दिव्यता, भव्यता, सौंदर्य, आत्म साम्राज्य में स्थिति, यही प्रेमपुरी। और उनकी कृपा नहीं हो तो अध्यात्म का आनंद असंभव है। आपके उद्बोधन के लिए धन्यवाद। ओम ध्यानमूलम गुरोर्मूर्ति, पूजामूलम गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम् सामगः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम् योगिनो यस्यान्तम् न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ॐ कृष्ण कृष्ण महायोगिन् भक्तानाम् अभयङ्कर गोविन्द परमानन्द सर्वं मे वशमानय। हे देव हे दयित हे जगदेक बन्धो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदा नु भवितासि पदम नृशोर्मे। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा के स्वरूप गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। पूज्यपाद श्री 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 स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज के पवित्र स्मृति को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। कृष्ण परमात्मा आत्म संयम की बात का प्रारंभ एक नवीन विचारीकरण से करते हैं। कहते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। हम बोलेंगे, आप लोग भी दोहराइए। कल से आप में भगवत गीता जी को लेकर के आना, एक एक श्लोक को जहां जहां कहे बोलते जाना। पहला श्लोक है छठा अध्याय। ओम श्री भगवान वाच, बोलिए ओम श्री अनश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः। अनाश्रित आश्रित अनाश्रित, आश्रित श्रद्धा विश्वास शरणागति इच्छा संकल्प इत्यादि, कर्मफलम कार्यम, कर्मफलम कर्म के फल की आकांक्षा में अनाश्रित, जिसको कर्म के फल की इच्छा नहीं ऐसा। कार्यम कर्म करोति यह, यह मने जो, जो कर्म के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है, ससन्यासी वही सन्यासी है, च योगी च योगी भी वही है, न निरग्निर न चाक्रियः जो सब काम छोड़ करके बैठता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसे बैठ जाता है, और जो अग्नि का भी त्याग कर देता है, वो उसको सन्यासी योगी मानना उचित नहीं है। एक बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही कि जो अग्नि को छोड़ दे, जो कर्म करना छोड़ दे, वो क्रिया को छोड़ दे, वो सन्यासी ऐसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो है ही नहीं। कौन सन्यासी है, कौन योगी है, जो कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करता है। अब यहां एक नई बात भगवान कृष्ण ने कही है। उन्होंने कहा कि एक नए सन्यास की धारणा दी भगवान ने। सन्यासी को ऐसे ही माना गया जिसको संसार की धारा के विमुख चले। संसार की धारा क्या है कि उनके पत्नी हो, उनके बच्चे हो, उनके अपने घर हो, अपना धंधा व्यवहार हो, धन उपार्जन हो, और फिर उनके शादियां होती रहे, सब ये बात है। ओ कल मां पूर्णबोध है, उनके कक्ष में गए तो वो कहती रही कि उन्होंने कहा माता जी पिछले साल तो 15 तारीख को आपका प्रागट्य दिन जन्मदिन था, तो हमने भंडारा गवाया, आज आपका जन्मदिन नहीं क्या। वो कहते स्वामी जी पिछले साल 15 तारीख को जो हिंदू तिथि थी वो आज नहीं है, वो हमारा जन्मदिन हिंदू तिथि से होता है, होली के बाद में अष्टमी को। मैंने कहा मैंने तो सोचा था कि 15 मार्च को है, इसलिए मैं सवेरे आ गया आपको अभिनंदन करने के लिए, भंडारा भी मिलेगा दक्षिणा भी मिलेगी। वो बड़े हंसकर बोल रहे थे। तो उनके साथ में जो उनकी सेविका रही उन्होंने कहा क्या महात्माओं के भी ये जन्मदिन सब मनाना जरूरी होता है क्या। मैंने कहा देखो भाई महात्माओं का तो संसार होता नहीं है, महात्माओं के तो बच्चे इत्यादि नहीं होते हैं, महात्माओं के तो यहां कोई शादियां विवाह नहीं होता है, महात्माओं को न टेलीविजन है न रेडियो है न ताश है न क्लब है, इसलिए महात्मा को क्या होता है उत्सव होता है, और जो उत्सव है वो महात्मा के लिए नहीं है, वो भक्तों के लिए है। महात्मा को उत्सव करो ना करो कोई भी भेद नहीं है, किंतु भक्त अपने कल्याण के लिए कि इतनी घड़ी महात्माओं का सानिध्य और उत्सव के बहाने अनेक महात्माओं के दर्शन, उनकी कथाओं का श्रवण, उनके चरणों का यहां आना, यही हमारे अपने निजी अध्यात्म साधन में उत्कर्ष और अभ्युदय प्रिय है, इसलिए उत्सव होते हैं। बाकी महात्मा के जीवन में क्या है, केवल तीन कार्य है। शरीर है इसलिए एक रोटी दे लंगोटी तेरे द्वार पाऊं, काम क्रोध छोड़ चले हरि गुण गाऊं, यही है। एक तो शरीर है इसलिए भिक्षा है, भिक्षा किया इसलिए शौच है, इनको छोड़ करके केवल एकमात्र हरि भजन है। हरि भजन क्यों है? अरे समय काटने के लिए। अगर हरि भजन नहीं किया तो क्या करेगा? वो क्रिकेट कमेंट्री सुनेगा क्या? वो क्या करेगा? यही तो करेगा। अपने जीवन के प्रत्येक श्वास विश्व में रहते हुए विश्व से विमुख, ये सन्यासी के लिए एक करतल भिक्षा तरुतल वास। हाथ में भिक्षा लेना, पेड़ के नीचे सोना, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना, ये सन्यास की एक कल्पना रही। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भी यही कहते रहे, कौपीन वंतम खलु भाग्यवंतम। अब कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक नई धारणा है, संसार से विमुख जो धारा है, संसार के विरोध में है, संसार से शत्रुता में भी है। शत्रुता माने उनके लड़ाई नहीं, किंतु ये हमारी रुचि का नहीं है, इट्स नॉट अ माय कप ऑफ टी। तो ऐसे जीवन का निषेध कृष्ण के पहले तक संन्यास की व्याख्या थी। कल शाम हमारे प्रिय हैं, हमारे गुरु महाराज की परंपरा में जो एक भक्त है और नितिन मुकेश, उसका एक फोन रहा, स्वामी जी मैं कुछ अयोग्य बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं क्या? मैंने कहा जब वो अयोग्य ही है तो क्यों प्रस्तुत करते, योग्य है तो प्रस्तुत करो। नहीं मैं छोटे मुंह बड़ी बात करना चाहता हूं। चलो दिल में है तो कह दो, तो आपके दिल की भड़ास निकल जाएगी। क्या बात है स्वामी जी, आज आपके बेटे की नई फिल्म रिलीज हो रही है। मैंने कहा प्रीमियर शो है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, एक साथ में भारत में 700 थिएटर में रिलीज, नील नितिन मुकेश सम गोड समथिंग लाइक दैट। मगर आप एक बार फोन भी उसको आशीर्वाद कर दीजिए। मैंने कहा सो तो कर सकते हैं, अयोग्य बात क्या थी? वही कि अगर आप भी साथ में चले। मैंने कहा क्या फिल्म है क्या? वो तो एडल्ट के लिए है, मारपीट धमधूम दिशुम दिशुम है, फिर मेरे को क्यों लेके जाते हो भाई? हाँ हाँ, हमारे बड़े महाराज जी ने एक दिन हरिद्वार से एक व्यक्ति को भेजा शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में, तीन बस, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है हरिद्वार में, सारे महात्मा आओ, शिवानंद आश्रम के तमाम महात्माओं गुरुदेव की आज्ञा से बस में बैठ के गए। कहां गए? गंगा टोकीस नाम के टोकीस के सामने खड़े हो गए। तो महात्मा लोग बोलते हैं ये सत्संग कहां हो रहा है? टोकीस के अंदर हो रहा है। क्या था? संत ज्ञानेश्वर फिल्म थी। तो उसको कोई बुरा नहीं समझा हमारे गुरुदेव ने कि संत ज्ञानेश्वर फिल्म, क्योंकि एक मर्यादा है। किंतु संन्यास को हम इस ढंग से देखते हैं कि जो संसार से अछूता रहे। श्री शिवानंद मयी मां कहती थी एक शहद की बूंद के निकट बैठो और उसको मक्खी खा करके चली जाए, दूसरी मक्खी उसके ऊपर बैठे और फिर खाए, चिपक भी जाए मर भी जाए। संन्यास है वो जल, क्या बोलते हैं, पद्म पत्र विवाह वशा, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। तो ऐसे भी नहीं कहा जल में कमल का पत्र रहे, फूल तो थोड़ा ऊपर रहता है, पत्ता जल को स्पर्श करके रहता है फिर भी गीला नहीं होता, एक संन्यास की मान्यता। किंतु भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, संन्यास का जीवन है नकारात्मक जीवन नहीं, कि वो कर्म को ग्रह को जीवन के सारे स्वरूप को छोड़ दे, निष्क्रिय हो जाए। पलायन हो जाए। नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा है ये पलायनवाद जो है वो सन्यासी नहीं है। नहीं, पलायन तो होना ही नहीं, किसी भी अवस्था में दृढ़ खड़ा रहना है। इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट, हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हूं, कैवल्य केवल कूटस्थ आनंद हूं। ये सन्यासी, हम तो ऐसे जलती हुई चिता पर बैठ करके वीणा बजाते हैं, तो ये सन्यासी का जीवन है। वो एक बाबा जी नौका में जा रहे हैं, वर्षा हो रही है तो नौका में पानी भरने लगा, तो अपना कमंडल से नदी से पानी भरा भर के नौका में डालने लगे। और मल्ला बोला, अरे बाबा क्या कर रहे हो? बोले, भगवान की इच्छा है नौका में पानी गिरे, इसलिए मैं भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा हूं। अब वर्षा बंद हो गई, भगवान चाहता नहीं, फिर नौका से पानी उठा करके बाहर डालने लगा। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उनकी ईश्वर के पास में शरणागति है। आई एम डाइंग, थाउ आर्ट माइन, थाउ विल बी डन। मेरा कोई स्वतंत्र जीवन ही नहीं है। तो अर्जुन के मन में एक ख्याल था संन्यास का, किंतु कृष्ण का संन्यास एक नया आया। कृष्ण का जो संन्यास है न्यू डायमेंशन, एक्चुअली ऑल टुगेदर एक नई सोच है। इसलिए कृष्ण है वो अर्जुन को कहते हैं कि देख भाई सुन, ये जो न निरग्निर न जो अग्नि को छोड़ देता है वो सन्यासी नहीं है। हम समझते हैं और अर्जुन भी यही समझता रहा कि मैं छोड़ दूं, युद्ध नहीं करूं, जीवन सन्यास को उपलब्ध हो जाएगा, कर्तव्य को छोड़ दूं, कुछ भी ना करूं, अक्रिय हो जाऊं, ये सन्यास नहीं है। अब यहां दो बातें समझना जरूरी है सन्यास के बारे में, क्या धारणा है। एक तो है कि सन्यास का एक बहिर रूप है और दूसरा है सन्यास का आंतर रूप है। लेकिन एक तो है सन्यास की अंतरात्मा है, विद इन द सेल्फ, डाइव डीप इन द रिसेस ऑफ द हार्ट एंड फाइंड द पल्स ऑफ द एब्सोल्यूट। अपने हृदय गवर में एक डुबकी लगाओ, गोताखोर के माफिक और ज्ञान के प्रकाश के चैतन्य के मोतियों की प्राप्ति करो। तो पुराना सन्यास जो है वो बहिर्रूप को जोड़ देता है। पुराना सन्यासी कहता है कि ये दाढ़ी और जटा बढ़ाए तो बढ़ाओ बढ़ाओ, काटो कभी नहीं, और अगर काटना है तो पूर्णिमा पूर्णिमा को काटो, नहीं तो नहीं काटो। और जो कपड़ा है उसको गाय के गोबर और गेरू में रंगो, आजकल तो मिले रंग रंगा करके दे देती है। तो ये पुरानी परंपरा जो तरुतल वास है कि जमीन के ऊपर किसके घर में नहीं पेड़ के नीचे सो जाना, ये एक पुराना बाह्य आचरण था। किंतु नई जो परंपरा है वो क्या, कृष्ण की परंपरा, कृष्ण की सोच, कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की समझदारी, वो क्या कहती है कि तुम्हारे भीतर में तुम्हारे अंतरात्मा जो है उसका रूपांतरण करो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करो, तुम्हारे भीतर जो चैतन्य है उसको देखो। अभी तक का चैतन्य क्या है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये अंतकरण चतुष्टय है। ये अंतकरण चतुष्टय के भीतर ही हमारा जो ये मैं है वो फंसा हुआ है, चारों ओर अपने अपने और खींचते हैं। मन जो है अपने ढंग से खींचता है, संकल्प से विकल्प से, और चित्त है वो पुराने जो संस्कार है उनको संग्रह करके। एक तो बात यह है, बंबई से आने वाले लोगों के मन में इच्छा रहती है कि अहमदाबाद आने के पहले 3 दिन हम बंबई में रुक करके आएंगे। रुकिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। क्यों, बंबई में जब हम आए तो हमको चौपाटी में जाना अच्छा लगता है। चलो एक लंदन से चलने के साथ में वो बंबई की चौपाटी का ध्यान करते हैं। क्यों चौपाटी जाना है, हाय बंबई की और भेल नहीं खाया। तो चौपाटी और भेल उनके जीवन में एक पक्का एक विषय हो जाता है। फिर बोले कहां खाना है, आनंदो है, उधर ठंडा दूध पिएंगे, वहां उसके पीछे बेल खाएंगे। तो एक तो है बंबई से लंदन से आने के पहले ही प्लान करते करते इतना बजे जाना, इतना बजे जाना, इतना बजे जाना, एक बात। दूसरा है मन में एक सोच कर लेना, क्या बंबई तो जरूर जाएंगे, चौपाटी जाके बैठेंगे, समुद्र को देखना अच्छा लगता है, किंतु बेल नहीं खाएंगे। ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था क्या है, अगर लंदन से अहमदाबाद की फ्लाइट सीधी है, बंबई जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद भी दिन में बहुत गर्म रहता है, शाम ढलते ढलते समुद्र की ठंडी हवा के माफिक वहां की रातें बड़ी ही सुंदर है। मैं छत में बैठ जाऊंगा, तारों को देखूंगा और कुदरत का नजारा वही प्राप्त कर लूंगा। तो चौथी अवस्था, मैं कहीं पर भी रहूं, मेरे भीतर एक आनंद का अमृत का एक कुंभ भरा है, बस उसी में मैं गोता लगाता रहता हूं। ये हमारी तमाम अवस्थाएं चित्त संग्रह करता है, वासनाओं को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, जो पहले भोगा है उसको क्या बोलते हैं, प्रिय मोद प्रमोद। प्रिय मुझे लड्डू अच्छा लगता है, ये प्रिय। मोद मैं अभी लड्डू खा रहा हूं। प्रमोद अरे वो लड्डू खाया इतना बढ़िया था, उसका सोच करके, उसके विचार करके उसकी खुशी में मनाना। तो ये तीन जो है, तीनों के बीच में ये मन और चित्त, बुद्धि जिस पर चिंतन करती है, अहंकार मैंने जो कहा वैसे ही होना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं भाई इन चारों से अलग हो जा, मन से भी अलग हो जा, चित्त बुद्धि से अहंकार से अलग। कैसे होता है, कर्म को छोड़ना तो बहुत कठिन नहीं है, कर्म तो छोड़ा जा सकता है। आलसी भी लोग हैं वो कर्म को छोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन पुराने शर्म पुराने संन्यास की यदि हम धारणा करें तो आलसियों में संन्यासियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अभी कुंभ मेला में क्या होता है, कुंभ मेला में भंडारे होते हैं, तो एक एक महात्मा लोग हैं वो भंडारे करते हैं, मंडलेश्वर लोगों को भंडारा तो करना होता है, समष्टि भंडारे तो निमंत्रण करते हैं, तो एक साथ में पांच भंडारे हैं, तो बंदा एक ही जगह तो खा सकता है, पांच थोड़ा खाएगा, और पांच में जाता जरूर है। क्यों, दक्षिणा मिलती है मोटी, एक शॉल मिलती है, रुद्राक्ष माला मिलती है, कोई कोई भगत लोग हैं वो भी दस रुपया दस रुपया दस रुपया दस रुपया, तो आयोजकों की ओर से सर्वसाधारण महात्मा को सौ रुपया दक्षिणा मिलती है, किंतु भगत लोगों की ओर से 400-500 मिल जाते हैं। तो ऐसे करके वो भागते हैं, खाना तो पूरा रख लेते हैं, खाते नहीं, ऐसा ही खाना छोड़ के चल जाते हैं। तो ये तो संन्यास नहीं हुआ, ये तो उचित नहीं हुआ, ये कर्म भी नहीं, तो अकर्म है, विकर्म है, निषेध है, क्योंकि आप अन्न का, इतने सारे लोग हैं अन्न की बर्बादी कर रहे हो, तो संन्यास का ही तो क्या, संन्यासम करो दी थी, आपकी वृत्तियां जो है संन्यासी है वो, इसको ये गेरू रंग क्यों दिया है, ये देने का अर्थ ये है कि पृथ्वी का जो रंग है वो गेरू ही है, रंग है। पृथ्वी समाज को धारण करती है, पृथ्वी समाज का आधार है, तो पृथ्वी समाज का आधार है, तो ये जो हमारा सन्यासी है वो भी सन्यास का आधार बन के रहे, सन्यास पर भार न बने, सन्यासी है वो पृथ्वी पर बोझ न बने, समाज के अंदर उपयोगी बन करके रहे, समाज में बोझ न बने, तभी तो वास्तव सन्यासी है। इसलिए कहा कि पुराने सन्यास की धारणा तो आलसियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कृष्ण कहते हैं अगर पुराने संन्यास की धारणा को माने लगे तो पूरा ही समाज आलसियों से भर जाएगा, कुछ भी नहीं करना चाहते। कुछ न करना यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी कर ले, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक विथ यू, ये तो इजी है, मुंह बुला के रहना, कोई आए तो ऐसे कर देना, ये उचित नहीं, जरूरत हो उतना बोलना ये बड़ा मुश्किल है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात असत्यम अप्रियम, सत्य बोलना, मधुर बोलना, प्रिय बोलना, असत्य नहीं बोलना, कड़वा तो कभी नहीं बोलना, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए समत्वम योग उच्चते, जीवन में संतुलन आ चाहिए। बहुत बोलता है नहीं बोलता है ये उचित नहीं। अगर जगत में कोई कुछ भी नहीं करना चाहता है तो ऐसा आदमी खोजना बड़ा मुश्किल है। इसलिए फल के बिना तो कर्म नहीं मिलता है भाई। अगर फल नहीं मिलने वाला है तो हम कर्म क्यों करें? जी विनोबा भावे जी ने यह भी कहा कि एक प्रकार का समाज है, वो तामसिक समाज है, राजसिक समाज है। अगर फल ही नहीं मिलने वाला है तो कर्म हम क्यों करें? तो ये कर्म जो करना है मैं फल की आकांक्षा ही नहीं है, योगी क्या कहा। और यहां एक उल्टी बात है कि फल की आशा छोड़ दो, ये कहना तो बहुत आसान है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक तोते की माफिक हमने रटी है। कर्म करो फल को त्यागो। अरे फल को त्यागो होता क्या है, समझो तो सही पहले। कम से कम मुझे क्या मिलेगा, मेरी उपलब्धि क्या, ये जो सोच है मन के भीतर की। तो ये क्या कहा कि तुम कर्म तो करो, फल की आशा छोड़ो। फल की आशा छोड़ना मैंने क्या होता है कि ये हम जो कर्म करें तो कर्म को फल को नहीं रखना, मैंने क्या है कि हमारे मन की कोई वासना ना रहे। ध्यान दें, जब मानव के शरीर की मृत्यु होती है तो उसके शरीर की मृत्यु होती है, उसकी इच्छाओं की मृत्यु नहीं होती है। यही इच्छाएं हैं वो मानव को नया जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। इट कंपल्स यू, इट फोर्सेस यू। तो इच्छाएं मृत्यु के बाद भी रहती है। इच्छाएं क्या है? अरे इच्छाएं तो परंपरागत है। जैसे कि पिता को डायबिटीज है तो बच्चों को होने की पूरी संभावना है। हमारे दादाजी को हार्ट फेल हुआ, हमारे पिताजी को भी हार्ट फेल हुआ, तो मेरे प्यारे तुमको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? परंपरा से है तो हार्ट की प्रॉब्लम क्यों। तो इस तरह से हमारे पिता कौन है? परमात्मा है। सुमने कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया? एकाकी न रोचते सद्वितीयम ऐच्छत, मैं अकेला खुश नहीं हूं इसलिए मुझे कोई और चाहिए। कौन चाहिए? ईश्वर की इच्छा से ईश्वर ने माया का निर्माण किया और ईश्वर ने अपनी इच्छा से माया से सृष्टि का निर्माण किया। अब ईश्वर की इच्छा से माया और सृष्टि हुई, सृष्टि में हम हुए, तो हमारा प्रादुर्भाव, हमारा जन्म है ईश्वर की इच्छा से होने पर। हम भी इच्छा नाम का भूत, इच्छा नाम का संस्कार, इच्छा नाम का एक हृदय में विचार जन्म से ही लेकर क्या है। अब फर्क क्या है? ईश्वर इच्छा का मालिक है और हम इच्छा के दास हैं। ईश्वर है वो अपनी इच्छा से इच्छा का निर्वहन करता है, हम इच्छा की इच्छा से चलते हैं। उतना फर्क है। ईश्वर जिस घोड़े पर बैठा हुआ है अपनी इच्छा से उस घोड़े को चलाता है, और हम जिस घोड़े में बैठे हैं घोड़ा अपने चल रहा है, हमारा उस घोड़े पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये इच्छाओं को इच्छा से ही संकल्प बनते हैं, इच्छा से ही कामनाएं बनती हैं, इच्छा से ही वासनाएं बनती हैं, इच्छा से ही हवस बनता है। कैसे होता है? संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये कल पूज्य पूर्णबोध माता जी का उद्बोधन पूरा हुआ, फिर मध्यान्ह में हम जब भोजन के लिए बैठे रहे, हम ये हमारे महापुरुष हैं स्वामी राजू नारायण, तो उनसे हमने बड़ी विनम्रता से पूछा, राजू महाराज आप मुझे कहिए, आप ये कथा, ये वेदांत, ये सत्संग कितने साल से सुनते हो? तो सो कहे 36-35 सालों के। उनके साथ में उद्दीवा का है दिनकर, दिनकर को रात में हमने कहा, भाई जब 36 साल से राजू है वो कथा कीर्तन वेदांत सुन रहे हैं तो उनको इस संसार में से मोह गया क्या? इनको नहीं पूछा, उसको पूछा। हाँ, एक भगवान बुद्ध थे, उन्होंने वृद्ध को देखा और फिर एक रोगी को देखा, एक मुर्दे को देखा, एक सन्यासी को देखा, बस सन्यास ले लिए। तो राजू भाई आप मुझे बताओ कि आपको वैराग्य हुआ कि नहीं? लोग बोरीवली से आते हैं, लोग कांदीवली से आते हैं, लोग दहीसर से आते हैं, बराबर आते हैं। अब पूछो अपने आप को, अपने जीवन में वैराग्य कितना हुआ, अपने जीवन में त्याग कितना हुआ, हमारे जीवन की विचार में, हमारे जीवन की सोच में कोई परिवर्तन हुआ क्या? ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत ही हृदय विदारक गति है। ऐसा नहीं कि हम आए बैठे बैठ के चले गए। ये कथा कीर्तन में सत्संग को बार 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 सुनते सुनते परिवर्तन नहीं होता, ऐसा नहीं है, नहीं है। राग द्वेष कम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, तो विवेक तो उत्पन्न होता है, किंतु इनके विवेक के अतिरिक्त आत्म जागरण हुआ क्या? एक प्रश्न बहुत गंभीर, क्योंकि जब हम कहते हैं कि फल की आकांक्षा करो तो फल न करे, कर्म ही ना करे तो फल की आशा नहीं होगी। भाई कौन हमारे यहां ऐसा पूछते हैं कि भाई आप दूध को गर्म करते हो कि नहीं? आप लोग दूध गर्म करते हो कि नहीं? तो कितनी माताएं हैं जो कहेगी कि स्वामी जी मैंने अपने जीवन में कभी भी दूध को गर्म करने गई तो उभर नहीं गया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं महात्मा जी, वो तो उभर तो जाता है, वो तो सामने खड़ी थी, देख भी रही थी, हैराम देखते देखते उभर गया, ऐसा तो होता ही है, उसमें नहीं क्या बात है। एक महिला कह सकती है मेरा दूध कभी नहीं उभरता। कौन? जो रसोई में जाती ही नहीं, जो रसोई जाएगी नहीं उसका दूध उभरेगा नहीं, जो स्कूल में जाएगा पास भी होगा फेल भी होगा, जो स्कूल जाएगा ही नहीं है उसको पास भी क्या फेल भी क्या। तो कर्म ही है, तो कर्म का फल तो है, कर्म ना करे तब भी फल है, कर्म करे तब भी है, किंतु कर्म करते हुए फल की आशा नहीं करने पर आपको कर्म का बंधन नहीं है। उसको गुरुवाणी कहती है करत करावत आपे आप, ना हम करता हरि करता। मैं करता नहीं हूं, करता आप ही हैं, परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। पूरे मन में ख्याल कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, जब अपना अस्तित्व छूट जाएगा तो कैसे हो सकती है? तो कृष्ण बहुत स्पष्ट करके करना चाहते हैं कि फल की आशा के बिना कर्म कौन कर पाएगा? कर्म करेगा क्यों? दौड़ते हैं क्यों? पहुंच जाए, चलते हैं क्यों? मंजिल की प्राप्त करनी है। श्रम क्यों करते हैं? कुछ मिलेगा। अरे भाई ये कुछ भी हो रहा है, देर इज अ कॉज देर इज अ इफेक्ट। स्वामी जी आप प्रेमपुरी क्यों आए? अरे भाई पिछले साल ही हमको बोल दिया था गिरीश भाई ने, मधु बाबू ने, हमारे दालमिया जी ने, महाराज जी अगले साल की तिथि भी तय करके आपने बुलाया, इसलिए आए। क्यों बुलाया भाई? बुलाया तो सत्संग करने के लिए बुलाया है, तो ये कारण तो हुआ ना, कारण तो हुआ है इसलिए आए हैं, आपका प्रेम बना हुआ है इसलिए आए हैं। तो किसी कारण के बिना तो कोई असर होती नहीं, बिना असर के कारण होता। देयर इज अ कॉज देयर इज अ इफेक्ट, देयर इज अ इफेक्ट देयर इज अ कॉज, देखो पैरेलल, वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही चलते। तो कर्म है तो फल है। आवाज ताली बजाए तो आवाज होना ही होना है, पानी में हाथ डाले तो गीले होंगे होंगे, मिर्ची खाई तो मुंह में जलेगा जलेगा। हाँ, और आम है, खट्टा भी हो सकता है मीठा भी हो सकता है। बर्फ को हाथ लगाए तो ठंडा लगेगा लगेगा, समुद्र किनारे खड़े हो तो उनकी जो लहरें आकर आपसे टकराएंगी टकराएंगी। तो ये तो एक कर्म किया तो उसका अपना जीवन का प्रवाह तरंग होना ही होना है, फिर उसके लिए सोचना क्यों है? मैं रात में 10 बजे अहमदाबाद से बैठ जाऊंगा तो सवेरे फिर मैं ट्रेन में पहुंचूंगा कि नहीं? अरे क्या पहुंचूंगा कि नहीं? तुम पांव लंबे करके सो जाओ, सवेरे आप नहीं उठो तो कोई आके उठाएगा, महाराज बॉम्बे सेंट्रल आ गया उठो। वो जो आप जाते हो आपके हाथ में क्या होता है? वो एक छोटा सा एक टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा टिकट, इतना टुकड़ा। आजकल ई टिकट थोड़ा लंबा कागज आ गया है, उस कागज को घड़ी करके जेब में रख लिया सो गए।
आपको पता है उस कागज के पीछे कितना रेलवे स्टेशन मास्टर खड़ा रहता है, कितना असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जागते रहते हैं, कितना लाइनमैन, कितने फ्लैगमैन, कितने सिग्नलमैन, वो आपके इस कागज के टुकड़े के पीछे इतने लोग जागते रहते हैं। और आप 10 बजे गाड़ी चली, 10:30 बजे खुर्राटा करना चालू करते हो, 6:25 में कोई आके जगाते, तो वो किसके भरोसे आप सो गए? एक कागज के टुकड़े के पीछे इतने लोग आपके पीछे लगे हुए, क्या आपको इसकी भनक भी है? इतने शहर जहां गाड़ियां रुकी, जहां गाड़ियां नहीं भी रुकी, वहां पर भी लोग तो खड़े हुए हैं आपके लिए एक कागज के पीछे। उस कागज को जलाने पर एक चम्मच पानी भी गर्म नहीं होगा, मगर फिर भी उस कागज में आपको श्रद्धा है, एक विश्वास है। तो ये इतना बड़ा जो देह दिया है, इतनी बड़ी सृष्टि है, जिसने सूर्य बनाया, जिसने चंद्र बनाया, जिसने समुद्र बनाया, जिसने पहाड़ बनाया, जिसने कमल के पुष्प खिलाए, जिसने मेघ और धनुष दिए है, अरे हमारा जन्म होने के पहले जिसने माता के स्तन में दूध दे दिया है। मुझे बात बताइए, समुद्र किनारे ये आपके नारियल के पेड़ लगते हैं, इतने ऊंचे हो जाते हैं, 30-35 फीट ऊंचे हो जाते हैं, उसके अंदर में मीठा पानी रहता है। एक खोले उसके अंदर, दूसरी खोले, तीसरी खोले, उसके भीतर में जमीन तो खारी है, जमीन नमकीन है, जमीन से 35 फीट ऊपर उसके अंदर में मीठा पानी किसने भरा है? हाँ, कितनी कोशिश करो, एक बालू सा ही एक पेड़ा है, कोठरी में लाकर के शिवजी के मूर्ति के पीछे अलमीरा के ऊपर रख दो, शाम तक देखना चींटियों की लाइन बन जाएगी वहां पर। चींटी के फेफड़े हैं, उसके अंदर में खुशबू लेने की ताकत किसके अंदर भरी है? सैकड़ों गाय हो, किंतु एक गाय का बच्चा सवेरे पैदा हुआ शाम को अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी को ढूंढता है, उसको लपकता है, गाय भी ढूंढ लेती है, वहां कोई लेबल नहीं लगा है, कैसे ढूंढ लेते? ये शक्ति कहां से आई? फिर भी हमको शंका है कि मैं कर्म करूं तो मुझे फल मिलेगा कि नहीं, क्या अज्ञानता है। कृष्ण कहते हैं नहीं चलेगा। और एक और अद्भुत बात है कि हम कहते हैं कि भाई नाव चलाने से कोई तट पर नहीं पहुंचता, जन्मों जन्मों तक चलते चले जाएं मंजिल पर नहीं पहुंचता है, आकांक्षाएं करने से कोई आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है। अरे जो कोई नाव चलाता रहे तो कहीं तो पहुंच ही जाता है। कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, उसको पता नहीं था वो जाएगा, तुम चलते तो रहो भाई। हमारे गुजरात में लोग पैदल जाते हैं अंबाजी, पैदल जाते हैं डाकोर, अरे झंडा पताका लेकर के लोग द्वारका तक चले जाते, पैदल चलते ही चले जाओ, एक माचिस को घर्षण करो, घर्षण करने पर उसमें आग पैदा होना चाहिए, दूसरी बार करो, नहीं तो तीसरी बार करो, बनत बनत बन जाए, एक कोशिश करने से हो ही जाएगा। किंतु हम कहें कि नहीं हम तो किनारा ही छोड़ देंगे, तो किनारा छोड़ दिए तो गुजारा नहीं होगा भाई। वो किनारा एक आनंद का किनारा है, वो किनारा एक दिव्यता का किनारा है। कहते हैं कि जीवन का त्याग नहीं है, संन्यास जो है वो जीवन का त्याग नहीं है, वो जीवन का आनंद है, जीवन का परम भोग है। कृष्ण कहते हैं जीवन का रहस्य यही है कि हम जिसको पाना चाहते हैं उसको पीछे छोड़ देते हैं, वो हमसे दूर हटता चला जाता है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे हाथ के बाहर हो जाता है, जीवन करीब करीब ऐसा है। देखो भाई सुनो, हाथ खुला है तो उसमें क्या है? हवा है कि नहीं है? हाथ खुला है तो हवा है, हम मुट्ठी बंद करें तो क्या है? कुछ नहीं। हम हवा को पकड़ना चाहते हैं, मुट्ठी बंद करते तो हवा निकल जाती है, और हवा को नहीं पकड़ना चाहते तो हवा रह जाती है। एक पानी का ग्लास है, आधा ग्लास भरा हुआ है, तो क्या बोलेंगे मधु बाबू आप उसको? ग्लास आधा भरा हुआ है, क्यों ऐसा कहते हो? क्यों नहीं कहते हो कि ग्लास पूरा भरा हुआ है? महाराज कैसे भरा है? अरे आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। एक सोच को बदलो, पानी का ग्लास तो भरा, उसमें कोई शंका नहीं है, किंतु वो आधा और भी भरा हुआ है, वो किससे भरा हुआ है? हवा से। तो एक सोच बदलने करना है कि ये पानी का ग्लास, ये नकारात्मक चिंतन कृष्ण नहीं चाहते, कृष्ण चाहते कि हमारा चिंतन सकारात्मक हो, गुणी हो, पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन में कितनी वासनाएं आकांक्षाओं को हम बांधना चाहते हैं, जीवन उतना ही हमसे बाहर चला जाता है। तो मोर यू डिजायर, जितनी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी इतने उलझते चले जाओगे, उतना ही दुख आपका बढ़ता चला जाएगा। ऐसे होता है क्या? देखिए, अगर भगवान सबकी सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, ये एक रशियन कहावत है कि यदि भगवान सबकी सभी इच्छाओं को पूरा करे तो वह इंसान अधिक से अधिक दुखी हो जाएगा। ये कैसे होता है? तो एक आदमी ने कहा नहीं, ये कहावत गलत है। तो किसी महात्मा ने कहा ठीक है, तो भगवान को कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूरी करें। भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा तीन वरदान पूछ लो, जो चाहे सो लो। बोला रुको रुको, मैं अपनी बीबी को पूछ के आता हूं। वो इंसान कभी सोचा ही नहीं, पहले तो उनको भरोसा नहीं कि भगवान आएंगे, और भगवान आ भी गए तो क्या पूछना ये भी पता नहीं है। हमारी कोई सोच नहीं है, हमारा कोई आत्मचिंतन नहीं है, हमारा कोई मनोविश्लेषण नहीं है। मैं तो जाता हूं, मेरी पत्नी को पूछ के आता हूं। तो पत्नी है वहां पर, रोटी बेल रही थी पट्टे के ऊपर में, चकला बेलन कहते हैं ना, तो बेलन तो ठीक रहा, चकले में तीन पांव होने चाहिए, दो ठीक थे एक नहीं था। तो बोले तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो कह दो भगवान, मैं अभी पूरी कह देता हूं। वो बेलन उठाई, तीन दिन से बोल रही हूं इसकी टांग टूटी है, इसको जोड़ो। हे भगवान इसकी टांग जोड़। वो चकले की बेलन पट्टे के नीचे का एक टांग टूटी थी, वो ठीक हो गई। वो इतना होते होते वो झल्ला गया, अरे तू तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, एक वरदान मेरा फेकर चला गया, मर जा। तो मर गई। तो उसको इतना बुरा लगा, हे भगवान ये क्या हो गया, अरे भगवान इसको जिंदा करो, तीन वरदान पूरे हो गए। हमारे जीवन में कोई विचार नहीं, हमारे जीवन में कोई चैतन्य नहीं, हमारे जीवन में कोई अंतर सोच नहीं है। जीने के लिए कल ही इच्छा से बांधना ना समझे। जीना अपने आप में ही आनंद है, इवन यू लिव फील आनंद हैप्पी, कहीं भी रहे कैसी भी अवस्था में रहे, शुड फील इन ऑल कंडीशन, हमेशा आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। हाँ, आने पर खुशी जाने पर खुशी। हमारे गुजरात में एक रंग अवधूत जी महाराज नारेश्वर में हुए, उन्होंने अपने आश्रम में बोर्ड लगाया, क्या लिखा, आने वाले को एक सलाम, जाने वाले को दो सलाम, नहीं आने वाले को सौ सलाम। भाई तुम आए हो नमस्ते, जा रहे हो दो नमस्ते, नहीं आओ सौ नमस्ते, तुम अपने घर में खुशी में, अपने घर में खुशी, नो डिस्टर्बेंस। किंतु ऐसा भाव नहीं है, भाव ऐसा है जिसका जन्म हुआ उसको एक सलाम, जिसका मृत्यु हो गया उसको दो सलाम, और जो जन्म के बाद में मृत्यु के बाद में फिर जन्म नहीं होगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, उसको सो सलाम, क्योंकि वो जीवन मुक्त हो गया है। किंतु उसको जीवन मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आनंद में रहना पड़ेगा। आनंद कैसा है, जब कभी इच्छा है आनंद नहीं होगा, कोई तृष्णा है आनंद नहीं होगा, कोई मन में संकल्प विकल्प है आनंद नहीं होगा। क्या इच्छा है क्या तृष्णा है कि मैं तो प्रेमपुरी आती हूं और महाराज का 8:30 बजे कथा पूरी होगी, 8:30 बजे पूरी होगी, फिर वेदांत में भी बैठ जाऊंगी। महाराज ने 6ठा अध्याय चालू किया, वो वेदांत वाले महात्मा का 11 श्लोक हुआ है, वो भी 6ठे अध्याय का है, फिर क्यों बैठना है, चलो ठीक है फिर आज सब्जी लेके भी चले जाऊंगी। तो ये यहां बैठे रहे क्या, कथा में बैठे किंतु बाजार में सब्जी भी खरीदते रहे, तो ये ऐसा होना उचित नहीं है। जिस क्योंकि न आप कथा में रहेंगे न सब्जी मंडी में रहेंगे, कहीं भी नहीं रहेंगे, दोनों को खोएंगे। इसलिए हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि अगर कुछ भी ना हो तो हाथ में जप माला लेके बैठो, हाथ में गीता लेके बैठो, उसको समझने की कोशिश करो, कुछ मंत्र लिखने की कोशिश करो, जो कथा में कहा गया उसकी पॉइंट नोट करो। तो ये कहते कहते कथा में आप रहेंगे, नहीं तो क्या है इधर आना जाना बस पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत स्पष्ट कहा है कि पीड़ा इसलिए नहीं कि आप बाजार में बैठे हैं। ये देखिए, बाजार में बैठोगे तो पीड़ा है कि नहीं पता नहीं, जंगल में बैठोगे तो पीड़ा है कि नहीं पता नहीं। कोई आदमी कहे कि अहमदाबाद ठीक नहीं, बंबई आ जाओ, अरे बम्बई में तो भ्रा 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 भाग दौड़ ठीक नहीं है, चलो अभी दिल्ली चलते हैं, अरे दिल्ली में तो कोई सेफ नहीं है, कलकत्ता चलते हैं, अरे कलकत्ता में तो राम राम मर गए, इतने घाटी सब कड़क गंद 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 है, सब बंगाली कांगाली है। तो ये आप कहीं भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख अहमदाबाद में, बंबई में, दिल्ली कलकत्ता में नहीं है, बद्रीनारायण जाओ उधर भी नहीं है, सुख आपके मन में है, सुख है आपकी वृत्तियों में है, जहां आपको कोई इच्छा नहीं, जहां बैठा हो थी तही बैठो, जो देवे सोई खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, आमी तोमार तुम्हें आमार, जैननी चलाओ तेमनी चली, आमी जंत्र तुम्हें जंत्री, आमी रथो तुम्हें रथी, मैं तो आपके दास के दास के दास का दास, हाँ तव दासो हम, तव दासो हम, दासो हम तव दास से, वृत्यस्य 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 वृत्य, ऐसी भावना जब हो जाए तब जाकर के फिर आप जंगल में रहो, फिर आप घर में रहो, कोई भी फर्क नहीं हो जाएगा। अब कृष्ण है ने कहा कि तुम कहीं पर भी भाग के जाओ, भाग के कौन जाता है, शरीर जाता है ना, मन थोड़ा जाता है, तो मन जो है यही हमारे सुख दुख इच्छा वासना का कारण है, मन से ही इच्छाएं बनती है, मन से ही वासना बनती है, मन से कामना बनती है, मन से ही सुख होता है, मन से दुख होता है। देखो भाई, कोई बरसात है, बहुत दिन नहीं आई, जून में तो होनी ही चाहिए थी, 5 जून 6 जून को, अब जून पूरा कट गया, जुलाई होते होते वर्षा नहीं आई, हाय 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 क्या हो गया, बारिश नहीं हो रही है, अभी है ऐसी आई जोर की, बस 5 दिन बंबई बंद, ट्रेन चली नहीं, लाइट चली नहीं, क्या होने को बैठा है, इतने पानी छे राम राम राम, पानी नहीं था दुख, पानी बरस गया दुख, अब थोड़ी बारिश है चिक चिक चिक, ट्रेन भी चलती है, लाइट भी चलती है, किंतु बारिश चिक 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 होती है, 10 दिन हो गया सूरज निकला नहीं, क्या है हा? सूरज भी निकलता नहीं है, चिक चिक एक साथ बरसती क्यों जाता है, एक साथ बरस गया तो मुश्किल हा? ये कोई कोई लोग नौकरी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उनका जैसे BHEL है, ONGC है, जैसा परफॉर्मेंस रहे वैसे उनको प्रमोशन मिलता है, तो काफी लोगों को ऐसा है कि साल के साल प्रमोशन मिलता है, साल के साल दे आर डूइंग गुड परफॉर्मेंस है, और उनके साहब लोगों के साथ भी अच्छे संबंध है, मुंह कड़वा नहीं है, तो उसको साल के साल प्रमोशन मिलता है मिलता है मिलता है, 20-22 साल, अब एक साल नहीं मिला, हार्ट फेल हो गया, क्यों, इतने साल प्रमोशन था मेरा, इस साल नहीं मिला, उस लल्लू को मिल गया, वो लल्लू को इतने साल नहीं था, इस बार ही मिला है, और क्या मिला, इसका बॉस हो गया वो, तो इसको इतना बुरा लगा, 20 साल तक मुझे प्रमोशन था, उस लल्लू को एक बार नहीं था, अब इसको मिला तो मेरा बॉस बना दिया, बताओ क्या है, अरे 20 साल तक तुम्हारा प्रमोशन होता रहा उसका तुमको खुशी नहीं, अभी 1 साल नहीं मिला तो दुखी हो गया, अगर सबको प्रमोशन मिला और आपको मिला तब भी दुखी हो, क्यों, सबको मिला और मेरे को मिला उसमें क्या बड़ी बात हो गई, आपका मन किधर भी खुशी नहीं है, प्रमोशन मिलने पर खुशी नहीं है, नहीं मिलने पर खुशी नहीं है, मिल गया तब भी खुशी नहीं है, माइंड इज द ओनली कल्प्रिट। तो कृष्ण कहते हैं भाई ऐसे मत करो, अभी निश्चय ने बहुत बड़ा व्यंग किया इसके बारे में, कहा कि उन सारे लोगों पर जो जीवन को छोड़कर भागते हैं, अजीब पागल है, तुम जीवन को छोड़कर क्यों भागते हो, एंजॉय, जीवन की हर पल को आनंद से भोगो। एक राजा थे, राजा तो समझते हो कैसे रहते हैं, एक दिन एक मंत्री से लड़ गए, मार देंगे तुमको आज से अगले महीने की 1 तारीख को मार देंगे, समझते क्या, और ठीक बात है, मंत्री ने अपने घर में एक दिन कवि सम्मेलन किया, एक दिन हास्य सम्मेलन किया, एक दिन संगीत महफिल किया, एक दिन लेखकों को बुलाया, रोज रोज कुछ उत्सव हो रहा है, राजा है वो सोचे कैसे बात है भाई, उसको कहा है कि 1 महीने के बाद में तुमको मारा जाएगा, ये कवि सम्मेलन कर रहा है, हास्य सम्मेलन कर रहा है, संगीत वालों को बुला रहा है, नाट्यकारों को बुला रहा है, कैसी बात है, राजा एक दिन खुद तंग होकर के, वो मंत्री तंग नहीं है, राजा को तंगी हो रही है, उधर आ गया, तू करता क्या है, तू मरने वाला है, हाँ तो मरने वाला हूं ना, अब मारेंगे तब तो मरूंगा ना, तो कवि सम्मेलन क्यों करा? आपको क्या तकलीफ है भाई? आपको तो एक महीने बाद मरना है तो मार देना, तेरे को मर का डर नहीं? बोले मरने के पहले क्यों मरूं? जिस दिन मरना है उस दिन मरूंगा, उसके अगले दिन क्यों मरूंगा? हम क्षण क्षण मरते चले जाते, हम अपने जीवन के प्रत्येक पल को, जीवन के क्षण को आनंद में भोगे ही नहीं कर सकते। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद से करो। जो सांस अंदर आती है आनंद से हो, जो सांस बाहर जाएगी वह भी आनंद में हो। क्यों? क्योंकि मैं सांस लेता नहीं हूं। ये जो शरीर है वो क्या है? ये देह है, वो कृष्ण का मंदिर है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गुहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। हाँ, ये क्या कहा? ये कहा है कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते हे स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति। ये मैं कहता हूं यद करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि तदासि यत् यत् तपससि कौन्ते। मैं कुछ भी करता हूं कर सब कुछ नाथ तुम्हारे लिए। मैं तो करता ही नहीं हूं, आप ही कर रहे, आप ही है। वो भागवत जी में बड़ी सुंदर बात है। भागवत जी में कहा कि बंसी से पूछा गया, बंसी तुम कैसी भाग्यवान हो, तुमने क्या क्या तप किया? बंसी कहती है मैंने कुछ भी तप नहीं किया, कुछ तो किया होगा। राधा जी कहती है हम तो कृष्ण को मिल ही नहीं पाते, मिले तो उनको स्पर्श करना मुश्किल, उनको आलिंगन तो सोच के बार की बात है। और तू उनके दिल में रहती है, हट गई तो उनके ओठों तक चली जाती है। बंसी ने कहा मैं क्या करूं, मेरी एक ही बात है, मैंने अपने आप को खाली कर दिया है। अपने आप को खाली कर दो। खाली करना माने क्या है? अहंकार से मुक्त कर दो, इच्छाओं से मुक्त कर दो। तुम उसी क्षण योगी हो जाओगे, तुम उसी क्षण सन्यासी हो जाओगे। सन्यासी का अर्थ ये कपड़ों वस्त्र परिवर्तन करना नहीं है, सन्यासी का अर्थ मुंडन कराना नहीं है, शिखा सूत्र छोड़ देना नहीं है। सन्यासी का अर्थ है क्या है कि मेरा कुछ नहीं है, कृष्ण तुम्हें जो कुछ राग सुनना है तुम ही फूंक मारो और तुम ही सुन लो। मैं नहीं हूं, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है, वही है जो बंसी बना हुआ है, वही है बजाने वाला है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् वही है ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। वही ब्रह्म है, वही आनंद है, वही चैतन्य है, वही ज्योतिर्मय है। कहते हैं कि तुम पागल मत हो, इच्छाओं को छोड़कर भागना नहीं। एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा कि हमारे जीवन में हमने कभी भी इच्छा नहीं की हो। कहता तात्पर्य क्या है कि एक बात है कि ये मुझे बात बताएं कि अपने जवाहरलाल नेहरू की उस छवि को देखा है जिसमें जवाहरलाल नेहरू चार पांव में घोड़ा बने हो और राजीव और संजय उनके ऊपर घोड़ा बनके बैठे, घोड़े पर सवारी हो तो संजय बैठा हुआ है, राजीव पीछे से डंडा लेकर के घोड़े को, प्रधानमंत्री को। अभी देखिए ये खेल कैसा है। तो ये प्रधानमंत्री को चार पांव में घोड़ा बनने के लिए क्या सुखी है दुखी है? बोलो, सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि वो किसके लिए? वो बेटा और बाप दोनों युद्ध करे, युद्ध माने कोई खेल करे, कोई कुश्ती करे, तो हराने का तो प्रश्न ही नहीं है बेटे को। वो बाप ही जमीन पर गिर जाता है, वो बेटा उनकी छाती में हरा दिया हरा दिया हरा दिया, और पिता खुश होता है। क्यों? क्योंकि बच्ची की खुशी में खुश होता है, उसको फल की आकांक्षा नहीं, उसको जीवन की एक है, मैंने कुछ किसी को दिया। फिर बड़ा होने के बाद में बच्चा जानता है मेरे को मूर्ख बनाया मेरे पिताजी ने, क्योंकि उस समय उसकी भी हालत वही हो जाती है, वही अपने बच्चों के लिए वो भी गिरता है, अपनी छाती में बैठा लेता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जीवन एक ऐसा खेल जहां कोई भी आकांक्षा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, कोई एक ऐसी नदी जिनके दोनों तट पर आनंद ही आनंद है, जिस प्रवाह में रुकना नहीं, चलते चले जाना। तो यहीं पर कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम जब यहां रहते हो तो क्या करो, एक अपने मन में स्पष्ट कर लो कि योगी कौन है। बोले कि और कहा कि सन्यासी कौन है? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। कोई भी आशा आकांक्षा के बिना जो कार्य कर्म करता है वही योगी है, वही सन्यासी, न कि अग्नि को छोड़ने वाला। अब अग्नि को छोड़ना क्या होता है कल इस पर बात करेंगे, अभी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।